हेलो जी, वेलकम। आप सुन रहे हैं अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट। अगर गलती से पसंद आ जाए तो शेयर भी कर सकते हैं। अब मजा करिए।
चलो आ गए भैया। संदेश,
कैसे हो?
बहुत बढ़िया, आप कैसे हो?
बड़ा प्रोग्राम देखा था मैंने किसका, मनोज भावा के साथ।
अच्छा,
इसमें दारू की बात।
आई होप अच्छा लगा आपको।
नहीं, बढ़िया लगा।
ठीक है, इस गाड़ी में जाएंगे, आपको यहाँ बैठना है, इधर आपके ऊपर है।
मेरी दबा दे दे यार, दबा तो दे।
रोल हो रहा है ना भाई? भाई ठीक है।
अरे रोल हो रहा
है, ये सब रोल है, यही तो शो है। आपको पता ना इस चैनल का नाम क्या है?
क्या है?
अनफिल्टर्ड।
अच्छा,
बाय संदेश।
अच्छा अच्छा,
संदेश मैं हूँ, अनफिल्टर्ड। आप होंगे आज?
जितना अनफिल्टर्ड हो सकते हैं उतना होंगे साले। आजकल
आजकल तो क्या,
आजकल तो अनफिल्टर्ड हो तो साले फिल्टर लगा देते हैं।
सही बात है। मनोज पाव वाला देखा आपने?
हाँ,
अरे वाह, बहुत सही एपिसोड देखा।
हाँ, अरे दवाई वाई खा लें, उम्र उम्र का भी तकाजा है यार।
कितनी हो गई उम्र?
अब तो हो गई।
क्या फ्रेम?
अब तो हो गई।
कितनी हो गई?
अब तो हो गई भाई, 50 के बाद गिनना बंद कर दिया था हमने तो।
जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा गुड लुकिंग हुआ।
मैं गुड लुकिंग,
एक्सपेक्टेशंस मेरी हाई थी लेकिन उसको भी सरपास कर गए
है ना।
बहुत गुड लुकिंग हुआ आप।
अरे यार क्या है, और गुड लुकिंग जो है ना आजकल लोग बड़े बोलते हैं यार, पहले तो कोई नहीं बोलता था। होम्योपैथिक दवाई है ना ये जो अच्छा। बोतल में लेता हूँ तो एक लड़की जो है जूनियर, वो काम कर रही थी मेरे साथ में जोरम फिल्म में, तो उसने आके मुझे कहा कि सर ये जो ये क्या है जो आप लेते हो?
हाँ, ड्रग्स है क्या?
तो मैंने कहा यार दवाई है ये, होम्योपैथिक दवाई है। तो उसने कहा कि हमारे जितने भी एक्टर्स के गैंग है उसमें ये लोगों को भ्रम है कि आप वोडका के शॉट लेते हो, शॉट आप हर सीन के पहले।
क्या बात कर रहे
हो? मैंने कहा बेवकूफों, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो तुमको नहीं दिखाई दे रहा है।
सही बात
है, ये होम्योपैथिक दवा को तुम लोगों ने वोडका के शॉट, मतलब एक्टिंग करा है, तो वो कैसे हो सकता है यार? नहीं सर, हम लोग तो यही मानते थे कि
ये बात इंडस्ट्री में फेमस है, मतलब
एक्टरों के बीच में होता ना भ्रम, होम्योपैथी की दवा ले रहे हैं आप तो कह रहे हैं वोडका के शॉट लेते हैं हर शॉट के पहले।
ठीक है ठीक है, मैं जूते उतार के बैठ जाऊं आपको। हां, तो ये हैं भावेश भाई जो कि एकदम कंट्रीब्यूशन करके ऑडियो कर रहे हैं। अच्छा हमारा
लेटे हुआ।
जी जी। इनको आज मिलना चाहिए ओवर टाइम। खराटे मारते हो आप?
कभी कभी बहुत थका होता हूँ तो थोड़ी बहुत आवाज निकलती है। बहुत ज्यादा थका होता
है। अभी आपको ड्राइव क्या कर रहा है?
मुझे ड्राइव क्या कर रहा है?
हाँ
हाँ, ड्राइव क्या कर रहा है?
अच्छा उस सवाल पे आप ठीक है,
क्योंकि आपने क्योंकि आपने एक चीज पूछ लिया ना,
एक मुकाम पे तो आप पहुंच गए हो।
अरे मुकाम पे पहुंचने के लिए थोड़ी एक्टिंग कर रहे थे।
एक्टिंग क्यों कर रहे थे? चलो उससे शुरू करते हैं कि एक्टिंग क्यों।
एक्टिंग इसीलिए कर रहे थे कि देखो जिस जो काम आपके मन में है और आपको लगे कि अगर ये नहीं किया ना तो मैं मर जाऊंगा, तो इसीलिए मैं एक्टिंग में आया। मुझे लगा कि अगर ये नहीं किया ना मैं मर जाऊंगा।
Okay.
मतलब मेरे लिए जिंदगी जो है ना दुश्वार हो जाएगी अगर ये नहीं किया। मुझे किरदार करने में, उस पर काम करने में, वो प्रोसेस में बहुत मजा आता है। मैं अपनी फिल्म देखता भी नहीं जल्दी, अगर देख लेता हूँ मुश्किल, मतलब कभी गलती से, या डायरेक्टर बहुत इंसिस्ट करता है कि आप देखिए, ना मुझे अपनी फिल्म अच्छी लगती है ना मुझे अपना अभिनय अच्छा लगता है, और वो एक सच बात है। लेकिन मुझे वो प्रोसेस
कभी एडिट रूम में
ना ना जाता ही नहीं, ना ना कभी नहीं, मैं मॉनिटर तक नहीं देखता।
हाउ आर यू मेकिंग श्योर दैट यू आर लर्निंग?
नो, बिकॉज़ यू आर इन द प्रोसेस। जब तक आपका प्रोसेस में इंटरेस्ट है, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, तब तक मुझे लगता है कि आप जो है आप सीख रहे हो, लगातार सीख रहे हो। बाकी जब बन जाता है उसको देखने जाता हूँ तो साला लगता है कि ये मैं या यहाँ चुक गया, वहाँ चुक गया, ये थोड़ा शुरू ऊपर हो जाना चाहिए था या नीचे होना चाहिए था। तो वो चीज़ पाने की तलाश तो रहती है, लेकिन साला वो जब आप कर रहे होते हो ना उसमें जो आनंद आता है मुझे, जब वो प्रिपरेशन कैरेक्टर
प्रोसेस ही,
हाँ कैरेक्टर को खोजने का जो प्रोसेस है ना, उसके सुर को, उसके बॉडी को, उसके अंदरूनी चीज़ों को, उसमें मुझे बहुत मजा आता है और शायद इसीलिए मैं एक्टिंग करता
हूं। वो कौन सी परफॉर्मेंस थी जिसमें आप कंसिस्टेंसी और ग्राफ की बात करते हो?
हाँ।
तो वो कौन सी परफॉर्मेंस थी जिसमें आपसे ग्राफ मिस हुआ और आपको दिखा हम लोग नहीं कैच कर पाए होंगे?
नहीं कर पाए,
लेकिन वो कौन सी अगर बता सको?
95% है यार।
क्या बात?
हाँ, 95% फिल्म में मुझे लगता है कि यार मिस हो गया।
मतलब लाइक एग्जांपल, मतलब
अब सत्या तो कल्ट है।
हाँ,
मतलब मात्रे कल्ट है, लेकिन मुझे लगता है यार यहाँ पे ये करना चाहिए था, यहाँ पे ये करना चाहिए था। सरदार खान कल्ट है। हाँ। लेकिन मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये वाला सुर यहाँ मिस किया, वो वाला सुर वहाँ मिस किया। लेकिन और एक फिल्म है मेरी गली गुलियाँ,
है ना, बहुत बेहतरीन फिल्म है
ना,
बिल्कुल।
हाँ, और वो फिल्म मतलब उस फिल्म ने और उस फिल्म को देखी मैंने जब पहली बार अपने जीवन में, और आज तक गली गुलियां देखने के बाद मुझे लगा कि यार ये मैंने 90% तक अचीव किया है।
अच्छा।
हाँ, लेकिन घोड़े खुल गए थे।
इवन इन भोसले, आई वुड से
भोसले, यस, बट लेसर देन गली गुलियां।
अच्छा।
अलीगढ़ लेसर देन गली गुलियां इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस, आई वुड से।
ओके।
क्योंकि गली गुलियां का जो पूरा परफॉर्मेंस है बहुत डिफिकल्ट परफॉर्मेंस है, मच मोर डिफिकल्ट देन अलीगढ़ या भोसले या जो भी फिल्में मैंने की है। वो इसका कारण है, एक आदमी जो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो रहा है तो उसमें सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं होती है, उसमें आपको पूरा होना होता है। जब तक आप हो नहीं जाओगे ना वो, तब तक गली गुलियां का परफॉर्मेंस अचीव नहीं हो सकता है। उससे मिली जुली जितनी भी परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड में हैं, अगर आप देखेंगे या उस जॉनर की जिसमें मानसिक संतुलन की बात आती है, वो सारे के सारे एक्टर कुछ दिनों के लिए थोड़े खिसक गए थे, क्योंकि उसके बिना वो उस तरह की परफॉर्मेंस आप अचीव नहीं कर सकते हो कि चलो मैंने एक्टिंग कर ली, बड़ी तैयारी कर ली, एक्टिंग कर ली। उसमें आपको थॉट्स, उस कैरेक्टर के थॉट्स क्रिस क्रॉस हो रहे हैं, और जब तक वो आप हो नहीं जाते हो तब तक उन थॉट्स को क्रिस क्रॉस कैसे कराओगे, उसकी एक्टिंग कैसे कर लोगे आप?
सही बात
है। और वो धीरे 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 ढलान पे जा रहा है। 28वें दिन मैंने अपने डायरेक्टर से बोला, मुझे अभी भी याद है वो जब मुझे जो है स्लीपिंग ये दिया था, कैंपोज दे के सुलाया गया था।
अच्छा।
वो विसल, प्रेशर कुकर का विसल जैसे होता है ना, वो मेरे दिमाग में बज रही थी। एंड मैं डायरेक्टर के पास गया, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे लग रहा है, मैंने कहा कि जस्ट सेव मी। उसने इमीडिएटली पुराने दिल्ली में रोका और कैंपोज दे करके सुलाया गया मुझे। और मेरे डॉक्टर से उसके बाद जब मैं उठा तो इट वाज ऑल राइट। मैं डॉक्टर से बात किया, उन्होंने कहा कि सर आप ब्रेकडाउन के वर्ष पे हो, ऐसे मत करो मनोज जी, है ना, एक्टिंग तो है। मैंने कहा सर अजीब नहीं हो सकता ये जो मैं कर रहा हूँ,
उतना जाना ही पड़ेगा।
नहीं मनोज जी, तो फिर एक काम करो, रोज़ रात को स्लीपिंग पिल लेके सो आप। तो रोज़ रात को एक स्लीपिंग पिल दिया था, काम के बाद मैं जाकर के स्लीपिंग पिल लेके सोता था। ये अगर जब तक आप जाओगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। और गली गुलियां वापस देखो तो आपको लग जाएगा।
मैंने कल रात को ही वापस देखी है इसलिए। हाँ, गली गुलियां तो कुछ क्रेजी परफॉर्मेंस है, और उसका उतना अप्रिशिएट ना होना
ना,
वो भी अपने आप में एक क्रेजी चीज है।
हाँ, वो क्रेजी चीज है।
लेकिन मतलब एक मेनस्ट्रीम अवार्ड में तो कोई नॉमिनेशन भी नहीं।
ना ना, नॉमिनेशन
आपकी भी नहीं? नॉमिनेशन
ना, कहीं ना कोई, बस इंटरनेशनल अवार्ड मिले मुझे। यहाँ तो मतलब यहाँ तो घंटा आप नंगे होके नाच लो, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ने वाला इनको नहीं फर्क पड़ने वाला, और शर्म भी नहीं आती है।
तो कुछ इस प्रोसेस में तो पर्सनल रिश्ते भी तो सफर होते होंगे। बट
देखो इसमें क्या है,
मुझे ना बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इसमें कि डू देन रिस्पॉन्ड टू व्हेन समवन कॉल्स यू मनोज, या फिर यू डू ओनली रिस्पॉन्ड टू द कैरेक्टर्स? लाइक हाउ डीप आर यू?
नहीं नहीं नहीं, मुझे लोग मनोज बोलते हैं कुछ, लेकिन इस ये जब परफॉर्म कर रहा था और सब ख़त्म हो गया, उसके बाद उसके बिहाइंड द सीन के फोटोग्राफ कुछ 2 महीने के बाद डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन करके बोला सर कुछ भेज रहा हूँ आपको। और उसने कहा कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था सर, लेकिन आप सर ये फोटोग्राफ्स देखो सर। मैंने फोटोग्राफ देखा और मुझे याद ही नहीं कि वो फोटो लिए कब गए। मतलब पुरानी दिल्ली में दुकानें बंद हैं, सुनसान है, मैं दुकान के बाहर सोया हुआ हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं खड़ा हूँ, और मेरा चेहरा, मैंने वजन इतना कम किया हुआ था।
और ये सब ऑफ कैमरा हो रहा है, ये सीन की शूटिंग नहीं हो रही।
नहीं, वो उसके जो शूटिंग वाले फोटोग्राफर ने लिए,
समझ गया।
वो देखा जब मैंने, तब मुझे दहशत हुई कि मैं कहाँ पहुँच गया था यार।
बट एक लेवल की अवेयरनेस तो होगी ना कि हाँ मैं इसमें जा रहा हूँ।
हाँ, नहीं, शुरू में अवेयरनेस होती है।
ओके,
आप कुछ समय के बाद इंटरेक्ट तो कर रहे होते हो। हाँ। तुमसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बट वो जो है, मैं, मेरा बहुत सारा हिस्सा जो है उधर है।
क्या अभी इस वक्त किसी कैरेक्टर में?
नहीं, अभी तो कुछ नहीं है।
अभी तो चिलो,
अभी तो एकदम चिलो।
क्या किया एक महीने पहले 23 अप्रैल को?
कुछ नहीं किया एक्चुअली, नथिंग।
सबसे क्रेजी बर्थडे कौन सा रहा आज तक?
क्रेजी ऐसा कुछ नहीं रहा है, क्योंकि मैं बर्थडे बहुत ही रिलक्टेंट होता हूं।
कभी तो जब स्टार बने हो गए
नए कुछ नहीं थे बाबा, वो सब
झूठ बोल रहे हो। ऐसा
नहीं, इसी तो कह रहा हूँ, उससे ज्यादा पार्टियां तो हमने बिना बर्थडे की।
सबसे क्रेजी पार्टी कौन सी की ये बता दो
यार। मेरी बहुत ड्रंक पार्टी रही है।
एक कोई किस्सा सुना दो। नहीं सुनाना, स्ट्रेट बोलो, नहीं सुनाना।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। याद भी तो करूँ ना, क्योंकि इतनी ज्यादा की हुई है ना। हाँ, एक बार हुआ क्या था कि तमन्ना फिल्म पूजा भट्ट ने किया था प्रोड्यूस,
ठीक है,
और महेश भट्ट साहब ने डायरेक्ट किया था,
ठीक है। कब की बात है?
अरे यार, वो
अच्छा, अर्ली
सत्या से पहले,
जब महेश भट्ट आपके प्यार में थे।
हाँ। हुआ कि भाई पूजा के का बर्थडे था या क्या था, तो पूजा, अच्छा। पूजा ने बहुत सारे लोगों को बुलाया था पार्टी में, उसने मुझे भी बुलाया, तो मैंने कहा यार जाना ही है। अब साले दोस्त आ गए मेरे कमरे में बम्बई में, अरे कहाँ जाओगे, कुछ पिला के जाओ। तो मैं उन लोगों के साथ बैठ गया। अब जब तक वो गए, तब तक वो 11 बज चुके।
उनके साथ क्या पी रहा था?
वही सब ओल्ड मॉन्क वगैरह।
अच्छा,
इतना ही अफोर्ड कर पाते
थे।
वो जब तक गए, तो तब तक हम चढ़ गई थी। तो मैं बाहर निकला बिल्डिंग के, और मैंने अपने वॉचमैन को बोला कि यार एक ऑटो बुला दो। और बाहर में एक दीवार थी, और दीवार पे ना ऐसे जिस पे आप बैठ सकते हो,
समझ गए,
तो उस पे बैठ गया मैं,
ठीक है,
क्योंकि चढ़ी हुई थी। फिर मेरे दिल में आया, जब तक ये ऑटो बुलाता है तब तक थोड़ा लेट लेता हूँ।
उसके बाद थोड़ी उठना था। उठा उसके बाद?
उसके बाद मेरी नींद खुली। कुछ आवाज आ रही थी झाड़ू जैसी, तो मैं नींद खुली।
सुबह का टाइम था फिर।
तो सुबह हो चुकी थी, और वो झाड़ू वाला झाड़ू दे रहा था, वो गली साफ कर रहा था। मतलब रात भर मैं बिल्डिंग के बाहर सो गया था। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब जो है इसको कम करूंगा मैं।
वो पहली बार डिसाइड किया है? वो पांचवी बार, सातवीं बार?
नहीं,
कम ऑन,
नहीं नहीं,
डिसाइड तो 100-200 बार
नहीं, किया। बड़ी बेइज्जती वाली बात थी यार, इसके बाद नहीं डिसाइड करोगे तो मतलब क्या मतलब है इसका? मतलब बहुत बड़े निर्लज आदमी।
कम से कम किसी को पता तो नहीं चला ना, कम से कम पूजा भट्ट की पार्टी में जाके कुछ दंगा नहीं किया?
नहीं, दंगा
वो भी किया होगा, लेकिन वो थोड़ी बताओ,
दंगा कभी नहीं करता था,
कभी नहीं।
आ, ना, 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 ना,
कभी मारपीट हो गई?
ना, 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 ना,
साले मैं स्टार, तू
नहीं। जैसे वो मैं और त्रिशु और सौरभ बैठते थे तो थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती थी, लेकिन वो ओपिनियन को लेकर के होती थी। लेकिन मैं अमूमन उस दौरान में भी और अभी भी, जब मैं उस तरह से अल्कोहल में नहीं हूँ, अभी भी जो है मैं जैसे ही देखता हूँ कि भाई कोई गलत लोग बैठे हुए हैं,
उठ के चले
जाता, मैं निकल जाता हूँ।
वेरी गुड। हाँ, उतनी समझ तो 50 के बाद तो आई
है। नहीं, 50 के पहले बे।
अच्छा अच्छा, सॉरी, माफ कर दीजिए बाजू भाई, माफ कर दीजिए। आपने त्रिशु और सौरभ दोनों नाम लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा पहला अच्छा इंटरव्यू जो था, जो वायरल गया, वो त्रिशु के साथ था। और जो मेरा सबसे एवरेज इंटरव्यू है वो सौरभ के साथ।
अच्छा,
सौरभ को मैं पसंद नहीं आया।
सौरभ जैसे जैसे समय बीता ना, सौरभ वैसे वैसे बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होता चला गया।
अच्छा।
हाँ, वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, वो सबके साथ है, हम सबके साथ।
वो मुझे लगा उनकी पर्सनालिटी का कुछ मुझे लगा।
हाँ, वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट अपनी जिंदगी में हो चुका है। अच्छा। अब उसका मन नहीं करता है बात करने का। हाँ,
पर काम में तो फ्लरिश कर रहे हैं।
देखो, काम जब करता है वहाँ पे, वो उसका एक ऑर्गेनिकली उससे होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी काम अच्छा करे वो बहुत बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, ऐसा
भी नहीं है। ठीक बात है, मुझे दुख है उस शूट का, मैं दोबारा एक बार उनके साथ ट्राई करूंगा, एक दो साल का वक्फा हो जाए,
हाँ,
उसके बाद मैं दोबारा ट्राई करूंगा।
हो सकता है सुन ले तो उसको बेचारे को गिल्ट इतना होगा, अरे
नहीं
तुमको फोन कर दे खोज के,
हो सकता है,
हाँ ऐसा आदमी है।
अच्छा,
फोन भी,
मुझे उस शूट का बहुत दुख है क्योंकि हमारी जम नहीं पाई, मुझे लगा कि उन, मतलब मैं उनको और बेटर गेज कर सकता था।
अच्छा अच्छा,
क्योंकि मैं एक रात एक दिन पहले ही मेरा कश्यप के साथ शूट हुआ था।
अच्छा,
और वो बहुत बेहतरीन हुआ था।
हाँ, हाँ।
तो मैं थोड़ा हाई पे था तो मैंने तैयारी थोड़ी कम की।
कश्यप जो है तुम्हारे शो के नाम के हिसाब से एकदम सूट करता
है। हाँ, सही बात है।
कश्यप को बोलना पड़ता है भाई चुप हो जा।
पांच घंटे बोले मुझे। हाँ,
कश्यप को जो है, कश्यप से, और कश्यप जो है कोई चीज
फिल्टर नहीं रखते।
ना ना ना,
उनका नुकसान भी तो होता है
जिंदगी में, नहीं करता है।
एक पर्सनल सवाल पूछ लो, मुझे लग रहा है आपकी पर्सनल वाइब है इसलिए पर्सनल सवाल।
हाँ, बोलो बोलो।
आपको इरफान से जेलसी होती थी?
क्यों होगी मुझे बताओ,
क्योंकि मतलब इफ आई कैन गो देयर। हाँ, अगर आपको लगे
नहीं नहीं नहीं,
मत जा, क्योंकि अगर आप ऑफेंड हो जाओगे तो
नहीं, ये कमाल की बात है कि ये पहली बार किसी ने ये बात पूछी और मैं चाहता हूं कि पूछो।
मैं पता क्यों बोल रहा हूं, मैं देखो मैं आपको पहले बता दूंगा। हाँ, मैं आपका अभी से फैन नहीं हूँ। हाँ, मैं फैमिली मैन वाला आदमी नहीं हूँ, मैं वासीपुर। हाँ, वाला भी नहीं हूँ।
राइट,
मैं कौन वाला आदमी हूँ?
अच्छा अच्छा, ठीक।
मैं कौन? सत्या, जुबेदा, बेवफा, टू एन एक्सटेंड, अगर आपको बेवफा का कैरेक्टर याद है। अगर याद है, मैंने ये सब हॉल में देखी है। ठीक है,
हार्ट अटैक का दौरा आएगा जैसे।
तो मैं उस टाइम से बोल रहा हूँ कि भाई मनोज वाजपेयी दुनिया का सबसे बढ़िया एक्टर है। ठीक है,
लेकिन ये सवाल क्यों पूछा?
उसके बाद मैंने ये पूछा कि एक शोहरत थी जो इरफान को मिल गई थी।
हाँ, हाँ।
जो आपको शायद वासीपुर या फैमिली मैन के बाद मिली।
तब तो मुझे शाहरुख से भी जेलसी होनी चाहिए। जेलसी अगर होना है तब तो उससे ज्यादा होगी ना, जो मेरे, जिसको मैं जानता हूँ। इरफान को मैं नहीं जानता था, है ना? हम दोनों यही मंडी हाउस से गुजर रहे हैं ना, आसपास से। वो कहीं और किसी और सर्कल में इरफान था कि मैं किसी और सर्कल में था। हम दोनों एक तरीके के काम भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों भिन्न एक्टर थे। दोनों की सोच बिल्कुल
अलग, स्टाइल
बिल्कुल बिल्कुल अलग सोच रही, लेकिन इज्जत बहुत रही एक दूसरे को लेकर के। जहाँ तक जलन की बात है तो
सबसे ईर्ष्या
नहीं, वो सबसे ज्यादा तो फिर तो करीब से जिसको मैंने जाना, इरफान से ज्यादा तो मैं करीब से उसको शाहरुख को जानता था, उससे होनी चाहिए।
पर उनकी राह अलग थी ना, मैंने सिर्फ इसलिए पूछा। आपने ना बोल दिया, सवाल खत्म हो गया, मुझे और नहीं जाना।
नहीं 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 नहीं,
मतलब मैं कंट्रोवर्सी नहीं
नहीं, क्योंकि तुमने सवाल पूछा है जो कि बहुत वैलिड सवाल किसी के मन में आ सकता है, बहुत ही वैलिड है।
ठीक है, फिर ठीक है।
हाँ,
मुझे ये नहीं,
ये वैलिड सवाल है।
ठीक है,
नहीं नहीं, किसी के मन में आ सकता है ये,
क्योंकि मेरे लिए उस स्पेस में ना, यू गाइज आर लाइक ओमपुरी नसीरुद्दीन शाह।
नसीर और ओम भाई में कमाल की चीज कि नसीर भाई और ओम भाई दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफ करते थे।
ठीक बात।
और बहुत और दोनों की दोस्ती के अलावा वो एक दूसरे के एक्टर से सीखते थे।
करेक्ट,
है ना?
लेकिन इफ आई में,
हाँ,
नसीर भाई ये भी खुल के बोल देते थे कि अर्ध सत्य देख के मुझे जेलसी हुई।
जैसे वो जेलसी किस तरह की हुई कि यार ये रोल मुझे क्यों नहीं मिला?
करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल,
है ना? अब देखिए जैसे कि मकबूल है, सभी लोग जानते हैं कि मैं विशाल भारद्वाज को 21 बार फोन किया था।
अच्छा, ऐसा है क्या?
हाँ, कि भाई तू मुझे दे दे वो रोल। पहले के कर रहा था उस रोल को।
अच्छा।
हाँ, पहले के कर रहा था, के मेनन ने इतने बड़े बड़े बाल भी बढ़ाए थे।
अच्छा
जी सर। और फिर वो फिल्म रुक गई, फिर जब वापस आया तब तक के कहीं बिजी था।
हाँ।
तब उसने जो है इरफान को लिया था।
ठीक है।
जी, और मैंने उसको तब वो केके को जो लिया था उसके पहले से मैं बोल रहा था मुझे दे दे, कहता नहीं यार मुझे ना तूने सत्या किया है ना।
अच्छा,
मैं किसी दूसरे को लेना चाहता हूँ। तेरा बिकू मातरे बहुत हावी रहेगा। मैंने कहा ठीक है, बाद में छोड़ दिया मैंने। मैं तो इन लोगों से सीखता हूँ, के हो या इरफान था, नवाज, विजय राज
तो क्रेजी आदमी है।
क्रेजी मतलब उसके साथ सीन करो तो समझ ही नहीं आता है कि ये लेके कहाँ जाएगा।
अच्छा,
ये अगला लाइन आपका इमेजिनेशन जो भी है कि इस तरह से मेरा ये को एक्टर बोलेगा, आप हमेशा सरप्राइज होगी। आपकी मतलब आपकी अपनी परफॉर्मेंस जो है संकट में आ जाती है।
बाप रे बाप।
हाँ, वो आदमी ऐसा है। दूसरा एक एक्टर है आपको, गजराज राव। गजराज राव के साथ में आप कभी भी इजी नहीं हो सकते।
सही बात,
क्योंकि
अनप्रेडिक्टेबल है।
अनप्रेडिक्टेबल, ये लोग कुछ अलग ढंग से चीजों को लेकर,
ऑडियंस भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाती है क्या होने वाला है।
ना, बिल्कुल ही नहीं।
ठीक बात,
बिल्कुल ही नहीं। ये सारे इन सब लोगों के,
विजय राज ने तो कितनी बार मेरे प्रोड्यूसर ने कॉल किया, बोले मैं इंटरव्यू नहीं देता,
नहीं करता,
नहीं करता,
ना 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 करता ही नहीं। वो बड़ी वो कमाल की चीज़ है उसके अंदर में कि बाकी सब मोह माया से दूर है।
अबे छोड़ किडनी निकाल लिया।
तो हुआ क्या, एक बहुत कमाल का किस्सा है। मैंने उसने सात उचक्के की थी जो विजयराज ने काम किया उसमें, तो हम लोग प्रमोशन कर रहे थे,
वो वीडियो तो वायरल है,
और वो सात उचक्के का जो वीडियो बना था, तो मार्केटिंग वालों ने कहा कि हम गालियों पे ही बनाएंगे क्योंकि इसमें गालियां हैं, और तो हम गालियों पे ही बनाना चाहते हैं। तो विजयराज ने कहा भाई जो नहीं करता मैं हटाओ, है ना। मैंने कहा कि नहीं नहीं ये सब नहीं होगा। तो मार्केटिंग वालों ने कन्विंस किया और हम बेवकूफ हमने जाकर
तो कर दिया। अरे बहुत वो तो एक ऐसी कल्ट चीज है जो दुनिया में दर्ज होनी चाहिए।
दुनिया में क्या दर्ज होनी चाहिए, रोज सुबह हमारे मुंह पे मारा जाता है यार।
अच्छा,
अरे सोशल मीडिया पे
क्या होता है।
अरे अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि गालियां नहीं होनी चाहिए फिल्मों में, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं और इतना ट्रोल करते हैं, उनको पता नहीं है कि हमको बेवकूफ बना के वो किया कराया गया था कि हम दो दिन में हटा देंगे, और वो हटाना भूल गए, और वो चीज़ 11 साल पहले की चीज़ है, और आज तक जो है कुछ लोग जो है उसको वायरल कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो है गाली दे रहे होते हैं। लेकिन उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। डिसऑन कर दिया मैं भाई। कमाल है कि विजय राज मुझे मिला एक बार लाउंज में, रात की फ्लाइट थी, वो लंदन जा रहा था, मैं सर्बिया जा रहा था शूटिंग के लिए। तो उसने जो है वहाँ पे लाउंज में पूरा कियोस कर रखा था, क्योंकि सबको अबे कि मेरी फ्लाइट छूटनी चाहिए, तो 5 जो है लाउंज वालों को लगा रखा था कि विजय राज की फ्लाइट नहीं छूटनी चाहिए। 5 बंदे है ना। हाँ पंडित जी आ गए, पंडित जी। मैंने कहा जा रहा है तू, तो कहाँ, कौन सी शूटिंग है लंदन में। नहीं पंडित जी, बिटिया मेरी वहीं है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा अरे वाह बिटिया तेरी इतनी बड़ी हो गई लंदन में, लंदन में रहती है। हाँ हाँ। मैंने क्या करती है, कहते पढ़ाई कर रही है। मैंने सोचा कि भाई कुछ एक्टिंग या डायरेक्शन की पढ़ाई कर रही होगी। नहीं नहीं, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। भाई साहब मैंने कहा तू देख विजय राज
तेरी बेटी वहां पहुंची।
यार तेरी बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, भाई तू मेरी नजर में उठ गया। मैंने कहा बेटी ने तो तुझे कहां से कहां उठा दिया। तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आप समझ रहे हैं, दुनिया का सबसे
सही बात है, उससे प्रीमियर स्कूल
है नहीं, उससे प्रीमियर स्कूल है ही नहीं, कोई कॉलेज है ही नहीं दुनिया में, नहीं है। तो मुझे बड़ा गर्व हुआ उस बच्ची पे कि उसने जो है विजय की लाज नहीं रखी, विजय का स्टेटस कद बढ़ा दिया उसने।
इससे तो ज्यादा इज्जत करते हो आप विजय की, वो तो आप कैमरा के लिए ज्यादा लाइट आ
गया। नहीं नहीं, बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि एज एन एक्टर तो मैंने जैसा बताया बेहतरीन एक्टरों में से एक हमारे समय का, जिससे मैंने बहुत सीखा है।
अभी बड़ी इनसिक्योरिटी क्या चल रही है लाइफ में, अभी कोई है बड़ी इनसिक्योरिटी या अभी थोड़ा?
नहीं नहीं, मैं इनसिक्योरिटी नहीं, अभी इच्छा है मेरी कि मैं 1 साल तक काम ही नहीं करूँ। अगले अप्रैल के बाद मैं 1 साल तक काम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ घूमूंगा। मैं गाँव जाऊँगा, दिल्ली आऊँगा अपने थिएटर के दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, मैं सिर्फ घूमूंगा। तो वो डेट दिया ही नहीं है मैंने, वो कहा है 1 साल काम करके सारे जितने इंस्टॉलमेंट है वो चुका करके।
अभी थोड़ी होगी कोई इंस्टॉलमेंट।
अरे नहीं नहीं, इंस्टॉलमेंट तो होते
हैं। आपके पास इफ यू कैन, अभी आपके पास कितना पैसा
नहीं है यार?
अरे कम ऑन,
नहीं सच में
आपको मैं बुलाऊं
क्या? गले गली गुलियां भोसले करके पैसा होता है क्या? कहाँ, कौन सी दुनिया में रह रहे हो तुम यार, जब इस तरह की फिल्में आप करते हो।
जब फैमिली मैन कर रहे हो तब तो पैसा आ रहा
है। अरे मतलब ऐसा थोड़ी है कि मतलब वो मैं इतना भर देते हैं कि आप जो है आपका पेंशन हो जाए।
फैमिली मैन में आपको शाहरुख सलमान टाइप फीस नहीं मिल रही है?
नहीं मिलती है।
क्या बात कर रहे
हैं? हाँ, ये जब OTT प्लेटफॉर्म वाले, ये रेगुलर प्रोड्यूसर से कम नहीं है मैं बता दूँ। हाँ, ये नहीं देते हैं पैसा, ये किसी स्टार को लेके आएंगे ना उसको भर के दे देंगे।
फैमिली मैन के लिए आपको पैसा नहीं मिल रहा?
नहीं मिलता है। नहीं, जितना मिलना चाहिए नहीं मिलता है।
दुनिया का सबसे बड़ा शो है भाई वो।
हाँ, तो दुनिया का सबसे
बड़ा शो कौन सा है?
लेकिन वो नहीं देंगे। वो क्या है, कोई गोरा, ये कोई गोरा आएगा वो करेगा ना तो वो दे देंगे उसको।
हाँ,
जैसे कोई ब्रांड, देखो ब्रांड जो है वो चाइना में अपने चाइना में उसने फैक्ट्री खोली, चाइना में फैक्ट्री खोली क्योंकि वहाँ लेबर बड़ा चीप है।
करेक्ट करेक्ट।
तो हमने हम चीप लेबर
शो में बिहारी आदमी ले लो
वही जैक रैन को लेंगे तो उसको देंगे भर के।
सही बात है, उसको तो कितना देते होंगे।
हाँ बहुत देते हैं।
आर्ट कला कभी ए पॉलिटिकल गैर राजनीतिक
देखो
कभी हो सकता है क्या?
आर्ट की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ए पॉलिटिकल रहे।
अच्छा
हाँ, ओके। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
ओके।
आप उसका अपने पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल तो कर सकते हो लेकिन ट्रू आर्ट की जिम्मेदारी है कि वो ए पॉलिटिकल रहे।
ओके।
है ना। और वो एक कोई सब्जेक्ट पे अगर वो काम कर रहा है तो वो उसका पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड व्यू जो है वो बिल्कुल सही रहे, वो किसी की साइड ना ले।
लेकिन जैसे भोसले में
हाँ
आप अल्टीमेटली तो जो रेप विक्टिम है उसकी साइड रहेंगे ना।
तो यही मैं कह रहा हूँ ना तुमको, व्हाट इज राइट उसके साइड भी जाओगे ना।
ठीक बात।
क्या
तो वो भी तो एक पॉलिटिकल चॉइस हो गई ना।
वो आप उसको पॉलिटिकल बोलोगे लेकिन ह्यूमैनिटी को मैं अगर मैं ह्यूमैनिटी के लिए जा रहा हूँ तो उसको आप पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ सकते।
ठीक है चलिए। नहीं मैं पॉलिटिकल पार्टीज वाली पॉलिटिक्स नहीं बोल रहा हूँ।
देखो वैसे अगर पॉलिटिक्स का एक बहुत वास्ट डिफाइन करोगे तो देन एवरीथिंग एंड एवरीवन इज पॉलिटिकल।
मैं उसी बात
मैं वास्ट डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ। अगर वास्ट डेफिनेशन में जाएंगे देन एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। देन व्हाट इज राइट को डिफाइन आप तभी कर पाएंगे अगर आप ह्यूमैनिटी के साथ में।
तो क्या आर्ट का पर्पस ये है कि वो ह्यूमैनिटी के साथ
कि वो ह्यूमैनिटी को सर्व करे।
गॉट इट।
है ना। अगर वो सर्व नहीं कर रहा है देन वो आर्ट नहीं है, फिर उसका वो आर्ट को आप किसी और ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं।
गॉट इट
जी।
तो अगर कोई आर्ट किसी प्रोपेगेंडा के लिए यूज हो रहा है, मतलब मैं अभी पता है क्या आजकल क्या ये बातें करूँ ना तो आदमी के मन में फिल्मों के नाम आ जाते हैं। मैं एक व्यापक रूप से एक डिस्कशन करना चाहता
हूं। देखो अब आर्ट आर्ट
जैसे कि मतलब
आर्ट ऐसा तो है नहीं कि अपने पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए या पॉलिटिकल साइड लेने के लिए आज इस्तेमाल हो रहा है।
हाँ हमेशा से हुआ है। और
हुआ है
सारी दुनिया में जो क्रांतियां आई हैं उसमें आर्ट कितना यूज हुआ है।
नहीं आर्ट को यूज किया गया है। हाँ आर्ट क्रांति नहीं कर सकता।
ओके।
कभी नहीं कर सकता। आर्ट क्रांति का हिस्सा हो सकता है।
करेक्ट करेक्ट सही बात है।
है ना। एक फिल्म है मेफिस्टो।
मेफिस्टो।
हाँ अच्छा। बहुत साल पहले देखी थी और मेरे फिल्म ना दिमाग में रह गई।
ओके।
उसमें एक सुपरस्टार होता है हंगरी का, बहुत बड़ा एक्टर सुपरस्टार। उसके बाद जो वहाँ का शासन होता है वो डिक्टेटरशिप वाला शासन होता है।
ठीक है।
और इस ये जो सुपरस्टार है ये बड़ा एम्बिशियस हो जाता है अपने पॉपुलैरिटी को लेकर के और देन ही स्टार्ट्स एंजॉयिंग the company of the big people and powerful people because wahan pe welcome hota hai uska and then he starts taking favor from them uske baad jab wo favor leta hai to satta bhi jo hai uska hi istemal karti hai
theek hai
apne fayde ke liye aur ek samay wo aata hai jab satta iske piche lag jati hai aur ye bhagta rehta hai jaan bachata rehta hai। एक सुपरस्टार जो जिसने समझा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ आज उसकी लंगोट खोल दी गई है। वो चीज़ ऐसी मेरे घुसी कि वो दिन था दिल्ली में शाकुंतलम में मैंने फिल्म देखी थी।
अच्छा ओके।
और आज का दिन है मैंने कहा भाई साहब राजनीति के गलियारों से तो दूर रहना। उस फिल्म ने इतना गहरा छाप मेरे मन में छोड़ा था।
फिल्म का नाम दोबारा बताना।
मेफिस्टो।
मेफिस्टो जरूर देखूंगा।
हंगेरियन फिल्म है।
हाँ।
कमाल फिल्म थी वो। फिल्म पता नहीं क्यों मैंने तो हजारों फिल्में देखी हैं।
हाँ।
देखता रहता हूँ।
हाँ, कुछ फिल्म रह जाती है घर घर जाती
वो
है।
फिल्म पता नहीं यार ऐसा। और अगर मैं आज पॉलिटिक्स या पावरफुल लोगों के गलियारे से दूर हूँ तो उस फिल्म मेफिस्टो की वजह से।
आप भी
बहुत बड़ा सबक। बहुत बड़ा सबक।
राजद या जदयू के कुछ ही। चलिए आ गए खान मार्केट।
मैं ज्यादातर पॉलिटिशियंस को इंटरव्यू करता
हूं। अच्छा।
हाँ।
किसका किया हाल फिलहाल में तुमने?
राघव चड्ढा का किया।
हाँ।
भूपेश बघेल का किया। राहुल गांधी का किया भारत जोड़ो यात्रा।
अच्छा। हाँ हाँ।
और सुप्रिया सूले का किया।
हाँ हाँ।
अभी शिवसेना की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी उनका रिलीज होने वाला है। आप देखो आप मेरा मनोज तिवारी देखना।
आप मनोज तिवारी देखा था मैंने।
अच्छा देखा है क्या?
रिंकिया के पापा
वो क्रेजी इंटरव्यू। वो क्रेजी इंटरव्यू है।
मनोज तिवारी
आप दोनों मिलके तो बिहार के लाला हैं।
भाई साहब मिलके नहीं अच्छा तुम इस पे बात
उनकी आवाज है आप अच्छा ऐसे बात करेंगे
अच्छा शूल 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 के पीछे की कहानी है भाई
क्या शूल
मनोज तिवारी
असली गुंडे वो हैं
ना ना
फिर
उसके बात करेंगे
चलो आ जाओ ना रोल है रोलिंग हो चल रहा है
किसी ने मुझे भेजा था ये कैसेट बिहार के दोस्त ने ये गाना सुन ये इस लड़के का गाना सुन
वो गाना कौन सा था
ना सुनो सही तो मैंने गाना सुना मैंने कहा कौन है यार ये क्या आवाज़ है और क्या सदा हुआ सुर है इस आदमी का और क्या लिखाई है इस गाने की तो मैंने कहा ये कौन है तो उसने कहा ये मनोज तिवारी करके लड़का है BHU का पढ़ा हुआ है 98 की बात कर रहा हूँ
अच्छा
और वो गाना मनोज तिवारी का दुनिया जानती नहीं है क्योंकि बाद में मनोज ने बहुत सारे ऐसे गाए जो बहुत ही पॉपुलर गाने थे जैसे एक रिंकिया के पापा वगैरह है चाट देनी मार देनी खींच के तमाचा हंस दे रिंकिया के पापा तो पॉपुलर गाया लेकिन किसी को नहीं पता है कि उस आदमी ने इतने बेहतरीन लिखाई वाले गाने किए हैं जैसे UPSC की तैयारी कर रहा है
बहुत बढ़िया थीम है
क्या बढ़िया
ये तो यूपी बिहार का थीम है
और ये शूल में बैकग्राउंड में उस आदमी का गाना क्योंकि मैंने अनुराग को बोला अनुराग ये सुन अनुराग भी इंप्रेस हो गया
तो अनुराग की लाइफ में MT आप लाए
और क्या और कौन लेके आया तो मनोज तिवारी का जो गाना था हमने शूल फिल्म में बैकग्राउंड में बहुत सारी जगह पे बजता है और सयाजी शिंदे का जो कैरेक्टर है वो बोलता है यार बस सुन यार ये एक नया लौंडा आया हुआ है मनोज तिवारी नाम है इसका
अच्छा,
और मनोज तिवारी को पता ही नहीं कि उनका प्रमोशन हो रहा है
उनको कोई पैसा नहीं मिला
पैसा क्यों मिलेगा हमको कौन सा मिल रहा था
शूल में किसी को नहीं मिल रहा
पैसा पैसा हमको कौन देता है पैसा
शूल में नहीं मिला RGV ने कुछ नहीं दिया
या तो काम दे दें
सही बात है
या करियर दे दें और एक अननोन आदमी के साथ बेचारा बना रहा है जिसमें
उस समय आपको लीड लेके फिल्म बनाना
है सही
वो सत्या से पहले की बात है ना
नहीं सत्या शूल कौन सत्या कौन
कौन तो शूल कौन तो ऐसी वो फिल्म क्यों नहीं बनती है
नहीं बनती है
मतलब गली गुलियां इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ मतलब सिर्फ एक ही एक्टर है और वो कौन
ओ भाई खाना तो आने दे वहां बैठ करके भौचक देख रहा है इधर उधर तुम नाश्ता नहीं करोगे क्या
नहीं तुम मेरे लिए कुछ आपने ऑर्डर भाई मेरे
मुझे लिए क्या पता क्या खाओगे
मेरे लिए भी
ये लो
मैं जूस पीऊंगा
जूस पीऊंगा
मैं दो गिलास जूस पीऊंगा कुछ पिलाइए ना पर्च में आया जूस पिला रहे हैं मनोज जी
इस पे आने के लिए कम से कम 20 साल लग गया तू फ्री में आना चाह रहा है
अरे बाप रे
अरे बहुत त्याग करना पड़ा तब आज जाके आया हूं मैं इसके सामने
ये आपके स्टाफ में
मेरा असिस्टेंट है
अच्छा
क्या रखता है मेरा
वेरी गुड कितना जाता है इनको
बहुत पैसा
अच्छा खासा पैसा होता है ना
मुझे ही नहीं मिलता है
अरे झूठे
अरे चल
जाना अरे फैमिली मैन में पैसा नहीं मिला गाड़ी में कुछ भी बोल गए सबके सामने झूठ नहीं सहूंगा
इज्जत बहुत मिली
इज्जत तो यार फैमिली मैन में तो मतलब ब्रैड पिट आके बोला कि हु इज दिस गाय
ब्रैड पिट तो नहीं बोला
बोले
तुम अगर अपने आप को ब्रैड पिट समझते हो तो अलग बात है
मैं खाओ ना मैंने उस नजर से नहीं देखा नहीं मेरी आंखें गई थी लेकिन उस नजर से नहीं थैंक यू आप वो बात इग्नोर कर रहे हो
हैं जूस अब क्या करूं मैं
मैंने कल बार टेंडर से आपकी फेवरेट ड्रिंक पूछी
शैंपेन
पीते हो
प्रोसेको
हां
अमीर हो गया हूं आप
अचानक से मतलब ये क्लासीनेस कब आई
पहले से थी वो तो गरीबी ने रोक रखा था
नहीं बट चॉपस्टिक से खाना और
नहीं मेरी इच्छा हमें आज हर नई चीज सीखता रहता हूँ
ओके
हाँ मेरी बेटी आज भी सिखाती रहती है चॉपस्टिक्स अभी भी सिखाती रहती है
बेटी के बारे में बताओ कुछ
प्रिविलेज्ड है क्या बताऊँ
प्रिविलेज्ड है बिगड़ी हुई है हमने बिगाड़ा है जब वो पैदा हुई थी तब कैसा फील हुआ था वो बताओ वो दिन
वो रोया था
वो तो एक एक्सटर्नल चीज है इंटरनल क्या चल रहा था
एक्सटर्नल कैसे हुआ इंटरनल हुआ तभी तो
आंसू तो मुझे भी दिख रहे थे अगर मैं वहां होता अंदर क्या चल रहा था वो बताओ ना
जिम्मेदारी का एहसास बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का था। शादी के बाद नहीं हुआ था, मुझे लगा कि शादी हम दोनों ने किया है, हम दुनिया
मस्ती चलेगी,
मस्ती चलेगी यार साथ में।
अनार गिर गया वो उठा लो ना।
जो गरीब है वो उठाए।
हम तो बन चुके हैं फैमिली मैन, हम तो सुपरस्टार हैं। अरे
अब तो थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको।
वही वही एक रह गई है वो, एक कोई फार्स बनवाओ किसी से। हाँ नहीं बेटी पे
जिम्मेदारी कोई आसान चीज नहीं होती है निभाने, खास करके जब आप अपने मन का काम करना चाहते हैं, है ना, और जब आपके when you don't have stars in your eyes, तो जिम्मेदारी का एहसास जो है ना आपकी फाड़ के रख देता है सर।
तब क्या बेटी के लिए पैसे वाला काम करना ज्यादा जरूरी हो गया क्या तब?
भाई मैं सोचा कि यार
क्योंकि उससे वो बात नहीं हो सकती जो बीवी के साथ हुई है कि भाई ना जो भी हम कमा खा लेंगे।
नहीं लेकिन ये था कि इसको अच्छा पढ़ा लेंगे आप। देखो जिम्मेदारी ये होती है कि बच्चे को आप अपने औकात से ज्यादा अच्छे स्कूल में डाल पाओ, अपने औकात से ज्यादा अच्छा परवरिश दो, क्योंकि उसको लाने का डिसीजन आपका था ना दुनिया में।
सही बात।
तो जैसे मेरे बाप, छह भाई बहन थे हम लोग, मेरे बाप ने जो है सब छह को ग्रेजुएट कराया, अच्छे स्कूल से कराया, और कर्जा ले लेके उन्होंने ग्रेजुएट कराया हमको। तो उस वहाँ से मैंने सीखा कि अपनी औलाद को लाने का डिसीजन आपका है, तो परवरिश तो आपको अच्छी देनी पड़ेगी, उसके बाद वो जो करना चाहे करे।
सही दी परवरिश, सही दे रहे हो। अभी उम्र कितनी है अगर बता सको? अगर
बेटी की
12 साल। स्कूल में बोर्डिंग?
बोर्डिंग में, बोर्डिंग से अच्छी जगह नहीं है। कल को पैदा करोगे 10 साल के बाद बोर्डिंग में डाल देना,
ठीक है,
नहीं तो बर्बाद कर दोगे, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा बच्चा। बड़े शहर में
हल्की सी इम्पोर्टेंस? हाँ बड़े शहर में तो नहीं, मुंबई थोड़ी शहर बच्चों का है ही नहीं।
है नहीं, बिल्कुल नहीं, ना बच्चों का है ना बुजुर्ग का है,
इम्पर्सनल शहर है बहुत।
दिल्ली कौन सा पर्सनल है?
मैं दिल्ली की तारीफ थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि बड़े शहरों की एक फितरत होती है।
हाँ बड़े शहर इम्पर्सनल ही होते हैं ज़्यादातर। अभी बगल में हरियाणा है,
हाँ
इधर पंजाब है।
पंजाबी एक्सेंट आ गया जैसे ही पंजाब बोला। एक्टर नंबर वन। एक्टिंग करते हो क्या लाइफ में? थोड़ा इम्प्रोवाइज नहीं कर पाए बच्चे के सामने? रिटायरमेंट के बारे में सोचते हो? थैंक यू। अरे वाह यार, थैंक यू यार,
देखा तुमने,
मेरी भी इज्जत हो गई आपके लिए। आपके लिए
सांडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे।
एक बार गा के सुना दो प्लीज, एक बार डांस कर दो, एक बार दिल अरोड़ा हो जाए।
चले
मैं आई विल बी शमिता योर दिल अरोड़ा। आ जाओ
चलो,
चीयर्स।
यही रह गया जिंदगी में,
चीयर्स
करो इस तरह का शमिता।
शमिता से बेटर लुकिंग नहीं हूं
मैं? हाउ कैन यू बी,
हाउ कैन आई नॉट बी?
नो यू कांट बी। कैसा लग रहा
है? बढ़िया, अमीरों वाला गाना
है। तो मैंने तुमको क्या बोला था, दलेर मेहंदी का गाना?
ना 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 ना, अरे मेरे साल रहो,
ऐश करोगे जिंदगी के सारे मजे
कैश
करोगे। खाओ।
क्या बंदा यार,
आगे बंदा बंदा फिल्म देखना।
किस बारे में?
ये वकील के गाने छोटे
रियल लाइफ पे आधारित है। कौन है इसमें जो विलन है? कौन है
विलन? जो अगर जो है ना इसमें जो नेगेटिव है वो हमने सारे अलग अलग कई सारे कैरेक्टर से लिया है।
अच्छा अच्छा,
लेकिन जो वकील है
स्पेसिफिक गॉडमैन पे तो नहीं?
नहीं नहीं।
अच्छा ठीक है, आसाराम पे
इसमें नहीं, इसमें जो है
मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ बोला ही नहीं।
अबे फंसवाएगा क्या तू?
फंस तो चुके, दो केस हो चुके हैं फिल्म पे अभी। मैं क्या बोलूं, आपने कुछ नहीं बोला, मैंने आसाराम बोला बस। अब बोलो।
बहुत बढ़िया यार,
है ना, खाना बहुत बढ़िया
है।
टॉपिक चेंज करते हुए आज का मौसम भी बहुत गर्म। जी जी जी,
किस
बारे में बात हो रही थी? मेरे इंटरव्यू में जो बात हो रही है वो मेरा आइडिया है, आपका कुछ नहीं है इसमें। चलो बताओ, मेरे इंटरव्यू फोन कैसे उठाया आपने?
मेरे बहुत सारे आईएएस आईपीएस दोस्त हैं।
अच्छा, ये कैसे हुआ?
क्योंकि पढ़ने लिखने वालों के साथ रहा हूँ मैं।
अच्छा अच्छा, तो फिर क्या हो गया, यहाँ कैसे आ गया?
ये तो प्रमोशन के समय में अनपढ़ों से बात करनी पड़ती है।
किरोड़ीमल कॉलेज
कभी कभी इंस्टीट्यूट से गलतियां हो जाती है भाई
जैसे एनएसडी से हो गई
है, एनएसडी से गलती नहीं हुई, उन्होंने सही सही बंदे को बाहर रखा, पूछो क्यों।
क्यों आप ही डिक्टेट करेंगे तो चलिए क्यों
उससे क्या हुआ ना, मुझे बैरी जॉन मिल गए और सही समय पर मिले, बड़ी कमाल की ट्रेनिंग उनके उनके कारण। और एक्ट वन जो हमने ग्रुप बनाया था वो नहीं बन पाता अगर हम मैं उस वहाँ चला जाता तो।
अच्छा एक चीज़, बैरी जॉन के बारे में तो काफ़ी बात की है आपने, पर एक ऐसी चीज़ जो जो आप पे अभी तक छाप छोड़े हुए, जो विट डिफाइंस बैरी फॉर यू, व्हाट वुड दैट बी, एंड प्रेफरेबली समथिंग यू नेवर टोल्ड एनीवन,
या
विच विल बी टफ टू रिमेंबर, बट इफ यू कैन डू दैट मेहनत।
बैरी
हाँ,
हम लोग रिहर्सल करने जाते थे ना, हम चाहे जितने पंक्चुअल हो जाए हम बैरी से पहले नहीं पहुंच पाते थे, और बैरी पहुंचने के बाद आपका वेट नहीं करता था, वो झाड़ू उठा करके पूरे रिहर्सल फ्लोर की सफाई करता था
रोज
रोज। और जो पंक्चुअलिटी और जो डिसिप्लिन उस आदमी ने बिना कहे हुए बिना बोले हुए सिखाई, वो मेरे जीवन का आज तक हिस्सा है। ये गुण तो मैंने किसी में नहीं देखा, किसी टीचर में नहीं देखा।
उससे पहले कि आपका वर्क एथिक इतना
इतना नहीं था जितना बैरी से सीखा मैंने, कि वर्क एथिक का मतलब क्या है, वर्क एथिक्स होता क्या है। हम बकचोदियाँ बहुत करते हैं ना वर्क एथिक्स के मामले में, वर्क एथिक्स उसका इस तरह का है कि पूरे दिन को एक घंटा उसका वेस्ट नहीं होता है, आधा घंटा भी वेस्ट नहीं करता है। अगर वो आधा घंटा खाली है तो वो किताब पढ़ रहा होता है या कुछ लिख रहा होता है। वैसा टीचर मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, ऐसा टीचर नहीं। एनएसडी के स्टूडेंट तड़पते थे कि बैरी कभी आ जाए पढ़ाने के लिए।
उस लेवल का व्यक्ति मिला उसके बाद आपको कोई?
उस लेवल का तो नहीं मिला बॉस,
नहीं मिला
ना, उसके पहले मिला था ना उसके बाद मिला, उस लेवल का तो नहीं मिला, उस लेवल का तो नहीं मिला।
एक बात बताओ, राजनीति वाला जो कैरेक्टर है वो ज्यादा, इफ आई मे यूज द टर्म्स लूजली, अब मुझे होल्ड अकाउंटेबल मत करना कि ऐसे कैसे बोल दिया,
नहीं
पर वो ज्यादा ब्रेक्थियन है या वो इंटरनल है? राजनीति वाला कैरेक्टर, उसका प्रोसेस कैसा रहता है?
वो
यू आर प्लेइंग टू द गैलरी,
सी द मोमेंट यू डू अ मेनस्ट्रीम फिल्म,
दैट इज मेनस्ट्रीम।
मेनस्ट्रीम ब्रेक्थियन नहीं हो सकता है,
ठीक है,
चाहे आप जितना भी उस मोमेंट पे कैरेक्टर की तरह से, लेकिन उसका हम एक ढांचा बना देते हैं।
बट अगर आप माय नेम इज खान कर रहे हो और ऑटिस्टिक प्ले कर रहे हो, उसमें भी आप ब्रेक्थी नहीं करोगे?
मैं देखी नहीं है फिर
नहीं, लेकिन मसलन उस फिल्म का नहीं, लेकिन इफ यू आर प्लेइंग एन ऑटिस्टिक कैरेक्टर फॉर इंस्टेंस,
जैसे ही आप उस तरह के कैरेक्टर करोगे, अगर आप ब्रेक्थिन बनाने जाओगे तो मुश्किल आ
जाएगी, खिलनी हो जाएगी,
फिर आप एक लेवल तक ही जा सकते हो परफॉर्मेंस के।
ओके,
क्योंकि वो तो भले ही मेन स्ट्रीम है बट इट इज कैरेक्टर ड्रिवन। मैंने फिल्म देखी नहीं है, फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि वो कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है।
हाँ, करेक्ट करेक्ट, माय नेम इज खान नाम है, वो कैरेक्टर का ही है पूरा।
हाँ, तो कैरेक्टर ड्रिवन है। जब कैरेक्टर ड्रिवन है तो कैरेक्टर होगा।
आपने रेन मैन देखी होगी?
हाँ, रेन मैन,
तो रेन मैन वाला अगर कैरेक्टर वही सिमिलर कैरेक्टर है।
हाँ हाँ,
आपने देखी होगी, अभी कैमरा में बोल रहे
हैं। कसम से
करण जौहर की फिल्में नहीं देखते, फोन नहीं करते ड्रंक हो गए साले मेरे को ले।
आज अगर मैं बोल दूंगा ना तो ये बन जाएगा बहुत बड़ा विवाद।
अच्छा,
कि मैंने करण की कोई फिल्म नहीं देखी।
नहीं देखी है? स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी नहीं देखा? स्टूडेंट ऑफ द ईयर
ना मैं स्टूडेंट रहा ना मेरा वो ईयर है, तो मैं क्या
बहुत बुरा जोक था इससे बुरे जोक नहीं मारे आपने कभी लाइफ में।
मैंने बहुत सारी फिल्में नहीं देखी।
आपने दुर्योधन प्ले किया लूजली अगर बोले, बहुत फैसिनेटिंग कैरेक्टर है दुर्योधन,
बहुत ही कमाल
कैरेक्टर, दुर्योधन से कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर,
मोस्ट हेटेड मैन, मोस्ट हेटेड मैन,
बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम
हिज पर्सपेक्टिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे दो रोल मिले थे चूज करने के लिए।
हाँ, कौन सा, दूसरा कौन सा था?
मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि एक बंदे ने किया है, वो कहेगा कि मनोज बाजपेयी क्रेडिट ले।
मेरे हिसाब से जो कर्ण का रोल है, जो अजय देवगन ने किया,
वो मुझे नहीं मिल सकता था, क्योंकि वो उस समय वो लीड रोल था। जो वो लीड करेगा उसका मतलब कि बाजार से पैसे लेके आ रहा है,
वो अजय देवगन को ही मिलेगा,
वो मनोज बाजपेयी को नहीं मिलता।
बता दो ना,
अरे
बहुत वक्फा हो गया इतना,
तो
आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपका तो ओटीटी पे चल रहा है ना धंधा।
नहीं, ऐसा थोड़ी है कि मतलब दोस्तों को आप नाराज कर दोगे, ऐसा थोड़ी है।
अच्छा, दोस्त हैं अभी आपके इंडस्ट्री में?
मतलब जानने
वाले लोग। दोस्त कौन बचे हैं आपके इंडस्ट्री में?
नहीं नहीं, है बहुत सारे।
मजाक है, मैं ऐसे ही, मैं कुछ नहीं जानता इंडस्ट्री के बारे में। अच्छा सुनो ना, चलो कैरेक्टर मत बताओ, दुर्योधन कैसे अप्रोच किया?
चूज कर लिया। प्रकाश जी कहते रहे, अबे यार ये ले लेना, खुद डायरेक्टर कह रहा है, ये क्यों चूज कर रहा है, इसके लिए मैं तो मैं किसी को ले लूँगा। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे ये चाहिए।
हाँ,
आ चलो ठीक है, ही गेव अप. उनको लगा कि ये क्या मतलब है, जबकि मुझे एग्जैक्टली पता था कि मैं कैसे अप्रोच करूंगा उसको.
ओके.
मेरे सबसे पहले मेरे दिमाग में मैंने अपने एक चीज को हटाया कि ये दुर्योधन का रोल है.
ठीक है.
अब मैंने ये दिमाग में रखा कि ये जो लोग हैं, ये मेरे बाप के मरने के बाद ये लोग कि इनका किस राजनीति से और इस जग इस पूरी चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मेरे बाप के मरने के बाद मेरे बाप का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये मुझे बेघर करना चाह रहे हैं सब. तो वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम? ही इज कमिंग फ्रॉम द राइट प्लेस.
करेक्ट. मोटिव सही है.
मोटिव सही है
बिल्कुल.
अब उसके बाद वो कैसे खड़ा होगा, कैसे उसका मैं लार्जर देन लाइफ उसका मैं कैमरे के सामने उसको करूं, क्योंकि मुझे एक चीज पता था कि अगर मैं लार्जर देन लाइफ नहीं हुआ चाहे अपने परफॉर्मेंस में चाहे अपने गेट में, तो ये जो बाकी के लोग हैं उनके लिए अब ये सारी चीज़ें जो उनकी जितनी सारी स्ट्रगल है जिसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वही वीक दिखेगा तो फिर मतलब
स्ट्रांग दिखना है. सही बात है.
स्ट्रांग दिखना है मुझे.
हाउ मच टाइम डज दैट टेक लाइक इन अ कमर्शियल फिल्म लाइक राजनीति?
नहीं नहीं, देखिए फिल्म मैं उसको कमर्शियल तब
इन मेन स्ट्रीम. यू सेड
मेन स्ट्रीम फिल्म है. मेन स्ट्रीम फॉर्मेट में देखो काम करने जाओ ना तो डेढ़ महीना लगता है कम से कम. अगर काम करने की आपका मन है
डेढ़ महीना लग जाता है
कम से कम लगता है.
बट सिर्फ उसी को शिद्दत से ट्रीट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं.
अब आप सिर्फ शिद्दत से उसी को कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. अक्स का कैरेक्टर मुझे करने में मुझे 6 महीने लगे थे. बीकू मात्रे को तैयार करने में 5 से 6 महीने लगे थे. मिलता ही नहीं है, मिलता मिल के नहीं दे रहा है. आई कुड नॉट सी दोज कैरेक्टर.
किसी एक इनमें से किसी एक का भी कोई प्रोसेस जितना भी बता पाओ थोड़ा अक्स या कुछ उसका सुनाओ ना.
जो अक्स का
या कौन में क्या उतनी मेहनत की आपने या
भाई साहब? इतना कंफ्यूजिंग था वो कि रामू चाहते थे कि मैं उसको प्ले करूं. हेलो हेलो मैडम हुज दैट, इस तरह करके चाहते थे कि मैं ऐसे प्ले करूं.
ठीक है.
और मैं रामू को मैं बोल नहीं पाया क्योंकि भाई अगला बंदे ने मुझे करियर दिया है यार, मुझे सत्या दी है.
ठीक है.
हाँ, मुझे फट रही थी कि मैं इसको कैसे बोलूं कि यार कि ऐसे नहीं कर सकता. मैं मुझसे नहीं हो रहा था. 1.5 महीने 2 महीने फेल क्योंकि मैं कन्विंस ही नहीं था. मैं पहुंचा शूटिंग पे, शॉट होने वाला है. ठीक है. मैंने कहा मैं तो जाके बोलूंगा. रामू के पास गया. अनुराग बैठा था. मैंने कहा रामू मैं आई वांट टेल यू समथिंग. व्हाट? मैंने आई एम नॉट कन्विंस विद योर यू नो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैरेक्टर. मिस्टर वाजपेयी द शॉट इज गेटिंग रेडी, वेदर यू कन्विंस और नॉट डू इट. मैंने कहा सर मैं करके दिखाता हूँ आपको जो मैं सोचता हूँ जिस तरीके से होगा. शॉट रेडी हो रहा है, पूरी शूटिंग होनी है फिल्म की. और मैंने उस सीन को जो करने अभी होने वाला है उसका मैंने परफॉर्म करके दिखाया. रामू उछल गया, अपने सीट से उठ गया. फक इट ओके ओके यू नीड मोर टाइम? नो सर आई वांट टू डू इट दिस वे. आर यू रेडी? नो गो अहेड डू इट. एंड दैट्स मतलब 11th आवर में जाकर के मैंने कैरेक्टराइजेशन चेंज किया.
क्या ऐसी और किसी फिल्म में हुआ या
नहीं? और किसी में नहीं हुआ.
ये तो अर्ली इन योर करियर वेयर
अर्ली इन माय करियर
जहां इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है. स्क्रिप्ट में ना, स्क्रिप्ट में थोड़ी कुछ पता चल रहा है. वो तो आपको दिमाग में बना.
लेकिन मैंने बना करके रखा ये वाला प्रिपरेशन करके रखा हुआ था मैंने कि मैं जा
वही प्रिपरेशन वाले आपने परफॉर्म किया.
मैंने आपको इतना तकलीफ हो रही थी कि यार तो गलत हो जाएगा अगर मैंने इस तरह से परफॉर्म किया जैसे ये बोल रहा है. आई हैव टू टेल हिम.
But how do you do it in a script which gives you no hints about the character? Like very little to know.
This is the you know, what is so interesting that nicest guy knocking your door at the wrong time. दर्शकों की नजर में तो वो तो चूतिया ही.
और उसको social etiquette नहीं आता.
नहीं आता.
इसलिए वो ऐसा ही लग रहा है कि वो.
तो मैंने उसका backstory बनाता कि ये साला salesman है. है ना? किसी के भी दरवाजे पर जाके irritate करके अपने सामान बेचता है. अभी बारिश हो रही है, सब छोड़ छाड़ करके सामान कहीं छोड़ छाड़ करके इस दरवाजे पे आ करके कि भाई अंदर में जगह मिल जाए, सारा भीग गया हूँ मैं. वो सेल्समैन वाला जो इरिटेटिंग नेचर था वो लेके आया था मैं. बट सिंस ही इज कमिंग इन द रॉन्ग प्लेस इन द रॉन्ग टाइम, पीपल आर गोइंग टू थिंक दैट ही इज द क्रेजियस्ट बास्टर्ड.
सही बात है. और लास्ट तक लगता है कि यही
रहता है,
यही लास्ट तक. और फिर उर्मिला का जो यार उर्मिला का इंटरव्यू करना है मुझे.
हाँ कर लो. बहुत मतलब
क्रेजी एक्टर उर्मिला. एक अंडररेटेड मतलब जो आज की जनरेशन नहीं मानती है जिनको पता ही नहीं है शायद. जैसे आपका डांस वैसे जैसे आपकी बॉडी
कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा
धर्म जी के स्टाइल में बोलो ना यार, कर दो कर दो।
काश मैं कर पाता यार।
क्या उम्र है तुम्हारी?
29 38 बोला आपने। 75 ईयर ओल्ड मनोज वाजपेयी थिंक्स आई एम 38।
हां वही बोल, मतलब कोई 75 तो मान ही सकता मैं भाई। देख तो कितने का लगता हूं बता भाई।
अरे बताओ भाई। 48
देख लिया।
हां तो आप मुझे 38 बोल रहे हो?
हां क्योंकि बुड्ढा लगता है तू।
हैं
हां और क्या करेंगे,
कैसे करूं?
थोड़ा सा एक्सरसाइज डिसिप्लिन में आ जा भाई।
हैं डिसिप्लिन नहीं है अभी?
अभी तो दिख रहा नहीं है।
दिख रहा है क्या?
चाहे जितने भी अच्छे शॉट पहन ले भाई, उससे दिख रहा है।
ये मत रखना।
नहीं क्यों नहीं रखा? घर का सामान है तो मतलब
तो अपने एडिट सिस्टम है उसमें
भाई, रख लेना है।
ठीक है ठीक है फिर। ठीक क्या कड़ी क्या देख रहे हो, मजा नहीं आ रहा क्या?
अरे बख्शोती कितनी देर तक करेगा?
अरे यार तो थोड़ा हमें तो, आप तो एक ही बार मिले हो ना, ये थोड़ी हर 6 महीने में मिलो।
ये अपने शो बना रहा है
तो मैं और क्या करूं, यही तो मेरा कर्तव्य है। मैं अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पा रहा हूं, मैं शो बनाने में लगा हूं, ये मेरी डेडिकेशन है। अच्छा बताओ कुछ, RGV AK फिर देवाशीष मखीजा, एक तरीके से एक ही लिनियज के हैं। उनके अंडर उन्होंने काम किया, उनके साथ उन्होंने काम किया, ठीक है। जैसे दिवाकर कनू है, जैसे विशाल अभिषेक है, तो ये जो एक लिनियज है RGV AK और देवाशीष मखीजा, इनमें क्या आपको यूनिकनेस दिखती है? तो तीनों में,
तीनों अलग है।
और क्या आपको, तीनों अलग है?
राम गोपाल वर्मा के साथ में क्या है कि वो मेन स्ट्रीम बहुत प्यार करता है वो आदमी।
सही बात है।
और मेन स्ट्रीम मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा जो है सबसे ज्यादा किसी ने बनाया और किसी ने प्रमोट किया वो राम गोपाल वर्मा है। उसने इंडस्ट्री चेंज किया उस अपनी क्रांतिकारी स्वभाव के कारण, जिदपने के कारण, उसके कारण अनुराग कश्यप और देवाशीष मखीजा हो पाए। अनुराग कश्यप, लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंट फिल्म बनाता है, मैं नहीं मानता हूँ।
आप क्या मानते हो?
मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल एक ऐसा जॉनर उसने क्रिएट किया हुआ है और इस तरीके से अपनी फिल्म को क्राफ्ट करता है जो इनएक्सेसिबल नहीं होती है आम जनता के लिए। कोई भी फिल्म बनाए, अच्छी बुरी कुछ भी बनाए, वो इनएक्सेसिबल नहीं है। देवाशीष मखीजा क्या है, वो
थोड़ा आर्टी ज्यादा है,
वो इंडिपेंडेंट सिनेमा वाला आदमी,
वो थोड़ा नीश,
वो क्रांतिकारी है पूरा। लेकिन उसके बावजूद आप देखोगे कि उस इनहेरेंट एक बड़ी उसकी कहानी ना, इनहेरेंट उसमें एक ड्रामा रहता है।
करेक्ट।
चूंकि वो इनहेरेंट है, वो छुपा हुआ है, जिसके कारण उसकी फिल्म इंटरेस्टिंग लगती है।
क्या जोरम थोड़ी ज्यादा मेनस्ट्रीम है या वो भी
नहीं? मतलब थोड़ी,
क्योंकि हम कैसे
ज्यादा एक्सेसिबल,
उसमें ज्यादा कैरेक्टर्स भी हैं, बहुत
ज्यादा ज्यादा कैरेक्टर्स भी हैं और इंडल्ज होने के मौके नहीं है उसके लिए।
क्या कनू बैल एकदम पागल है?
एकदम पागल है, तभी तो कनू बैल है वो। बट दैट्स हिज ब्यूटी, आई लव हिम। और मैं बोलता भी हूँ तो पागल है। और डिस्पैच जब मैंने खत्म किया तो मेरा मेनिस्कस टेयर हो चुका था।
अच्छा, उसको फर्क नहीं पड़ा?
उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी फिल्म को लेकर के सोच रहा होता है, वो वहीं पे खोया रहता है।
अगर शॉर्ट में एक्टर की मृत्यु भी हो जाए तो क्या कनू बैल को फर्क पड़ेगा?
आई डोंट थिंक सो।
अब जाने दूंगा ना, अब आंसर मिला। फ्लाइट है, फ्लाइट
कनू बैल,
अब तो कुछ मिला नहीं, कनू में है
ये कमीना है।
नहीं पर आर्ट के लिए आप ऐसे पर्सनल रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट? नहीं, आर्ट या पर्सनल रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या?
मेरे पर्सनल रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं चिल्ला पड़ा उसके बाद, जी जस्ट अ फेल, किसी के ना चोट उठ लग गई थी, लगा पड़ा था टेक पे टेक ले, जस्ट अ फेल। और मैं जाकर के अपने वैन में बैठ गया, मैंने कहा कि आई एम नॉट वर्किंग टुडे करके मैं जाके बैठ गया। आया अंदर, मुझे लगा आया सॉरी बोलने के लिए, सर ही इज ऑल राइट नाउ, डोंट वरी, इज ऑल राइट। आया वो, पूछो सोचो क्या बोला होगा उसने।
डोंट बी सो एरोगेंट,
नो, कहता मनोज सर आई डिसएग्री विद यू। मैंने कहा व्हाट? आई डिसएग्री विद यू सर, इट इज नॉट जस्ट अ फिल्म। बोलिए कि उसकी नाक फट गई।
सही बात है,
मेरे को एक्टर की नाक फट गई, खून निकल रहा है। इस इज जस्ट अ फिल्म। नहीं सर, यस ही इज मैड, यू मे डिसएग्री विद हिम,
पर
बट वो क्रिएट करके भी देता है।
दुनिया में वैसे लोगों की भी जरूरत है, कुछ वो भी करते हैं, ओम दरबदर बनती है।
बट आई लव हिम, कि इतना ऐसा इनसेनली इन लव विद द क्राफ्ट तो मैंने देखा ही नहीं है।
मजा पता कब आए?
हाँ
2 मिनट बस। मजा पता कब आए? जब डायरेक्टर इतना इनसेन हो और उसको काम करना आता ना हो।
हाँ
तब मजा है ना। कि फिल्म भी घटिया बना रहे हैं
हाँ।
और एटीट्यूड भी ऐसा
है, लोग हक के चले जाएंगे उसके ऊपर।
अरे रुक जा रुक जा, मनोज जी मनोज जी, ये कपिल शर्मा नहीं है कि उठ के चले जाओ, यहाँ बोलना पड़ता है।
क्या बोलेंगे?
ये जो लड़का है संदेश, दुनिया का सबसे अच्छा एंकर है।
नहीं, बहुत बढ़िया एंकर है संदेश, बहुत बढ़िया एंकर है।
आपको अच्छा लगा, मजा आया? जेन्युइनली बताओ कुछ।
बातचीत करने में मजा आया, लेकिन कुछ ज्यादा बातचीत करते हैं यार।
ये सबसे छोटा एपिसोड होने वाला मेरा।
बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग रहेगा।
नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मेरे जितने लंबे होते हैं उतने व्यूज आते हैं,
पक जाते हैं लोग,
आपको और लोग सुनना चाहते हैं। आप एक जनरेशन में बहुत बड़े सुपरस्टार हो, लोग के लिए बोलो आपको।
ये लोग ना अपना फोन रख करके और फिर अपने कॉर्पोरेट के ऑफिस में ना काम कर रहे होते हैं ऐसे करके, तो ये देख नहीं रहे हैं,
सुन रहे हैं,
झेल रहे हैं। आ समझा तू,
अपने आप को इतना नीचे मत आंको। अच्छा सुनो, एक सेकंड, सब्सक्राइब करना कि नहीं? एक सेकंड
प्लीज सब्सक्राइब करो।
कहां, किसको करना सब्सक्राइब?
संदेश को।
और ये जो जूते हैं ये कौन सी कंपनी के हैं?
इस कंपनी ने मुझे दिए नहीं है, इनको दिए हैं, तो ये अब इनसे पूछ लीजिएगा।
ये वुडलैंड के जूते
हैं। बहुत पैसे लेता हूँ ये सब बोलने के बाद समझा कर।
मुंबई का किंग कौन? थैंक यू सो मच।
सबसे अब्सर्ड आर्ट क्या देखा आपने आज तक?
विजय राज।
मतलब अगले की जो है बहुत बहुत प्यार करता हूँ उसको मैं, लेकिन बहुत बहुत सही आदमी है वो।
पर्सनली कैसे है विजय राज? उनका तो इंटरव्यू कभी मिलेगा नहीं।
नहीं, बहुत कमाल आदमी,
अच्छे ही लगते हैं, बहुत पॉजिटिव आदमी लगते हैं।
वो इंटरव्यू वगैरह नहीं करता वो तो भूल ही जाओ। हाँ, ऐसे मिल जाओगे कहीं तो तुम्हारे साथ बैठ जाएगा, पार्टी कर।
वो यारों के यार ही लगते हैं।
हाँ हाँ,